الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
جس جس کے دل میں زیارت سید الشہداء کی تمنا ہو میرے ساتھ مل کر سلام کے جملوں کو مولا کی بارگاہ میں پیش کیجیے گا.
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمة الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وجاهد بالسيفين وصلى إلى القبلتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجح حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد. وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم، أما بعد فقد قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيها الناس، إن الله ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. حضان محترم، عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ. خدا کا جس قدر شکر ادا کیا جائے اس عظیم نعمت پر وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کا ذکر کرنے والوں میں سے قرار دیا، ہمیں اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے والوں میں سے قرار دیا. حضان محترم، آفاق مہدویت کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری تھی، मैंने अर्ज किया था कि अभी तक हम आफाक महदवियत में से पहले उफुक पर बात कर रहे हैं, और वो पहला उफुक क्या था कि महदवियत और अकीदे का ताल्लुक, महदवियत और मारिफत खुदा का क्या रब्त है, ये इब्तदाई मजालिस में पेश कर दिया गया। महदवियत और नबूवत के बाब में गुफ्तगू जारी थी। हमने अर्ज किया था कि नबूवत आम्मा आदम से लेकर ईसा तक की नबूवत में और मेरे कायम इमाम की मारिफत में बहुत गहरा ताल्लुक है, और तीन जहतों से ये ताल्लुक है। पहली जहत सुनने अंबिया और इमाम जमाना की बहस कि जिसमें गुफ्तगु जारी है। फिर दूसरी बहस मवारीसे अंबिया और इमाम जमाना का ताल्लुक। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज सुनने अंबिया की बहस को मुकम्मल करें और मवारीसे अंबिया की बहस में दाखिल हो जाएं। तीसरी बहस इंशाअल्लाह खुदा ने तौफीक दी तो पेश करेंगे नबूवत के एतबार से खसाइस अंबिया और महदवियत का ताल्लुक। तवज्जुहात मेरे साथ हैं, मैं बात का आगाज करना चाहता हूं। कल हमारी गुफ्तगू यहां तक पहुंची थी कि हमने मुख्तलिफ अंबिया की सुन्नतें, बल्कि खुदा की वो सुन्नतें कि जो उसने मुख्तलिफ अंबिया में जारी फरमाई हैं, वो सब की सब मेरे वक्त के इमाम में भी जारी की जाएंगी। इस हवाले से नबी अल्लाह आदम और नूह का तज़किरा हो चुका, नबी अल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह का तज़किरा हो चुका, कल की गुफ्तगू में नबी अल्लाह कलीमुल्लाह जनाब मूसा का तज़किरा हो चुका बतफसील, जनाब ईसा का जिक्र आ चुका, जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र आ चुका, और हमारे आखिरी नबी हजरत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, आखिरी नबी का जिक्र भी बयान हो चुका। एक और नबी के कुरान ने जिनके वाकयात को, जिनके किस्से को बहुत तफसील से बयान किया है। अगर नबी अल्लाह मूसा के बाद सबसे ज्यादा तफसील से कुरान में किसी नबी का वाकया बयान हुआ तो वो नबी अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम है, कि जिनके नाम पर कुरान में एक मुकम्मल सूरा को नाजिल फरमाया गया और उस सूरा में मुकम्मल तौर पर नबी अल्लाह यूसुफ के गिर्द बात होती रही। अब उस सूरा में नबी अल्लाह यूसुफ के वाकये में क्या मालिम और क्या असरार पोशीदा हैं, क्यों वो कुरान के जो इतनी मुख्तसर सी किताब है और उसे कयामत तक की हिदायत का काम करना है, क्यों उस कुरान ने एक नबी के किस्से को इस कदर तफसील से बयान किया, ये एक मुख्तलिफ मौजू है, तफसीर सूरह यूसुफ। लेकिन हम इस वाकये में से फकत महल शाहिद को पेश करेंगे, हम नबी अल्लाह यूसुफ के वाकये में से फकत उन बातों पर रोशनी डालेंगे कि जो खुदा की सुन्नतें यूसुफ में भी जारी हुई और मेरे वक्त के इमाम में भी जारी होंगी। नबी अल्लाह यूसुफ का किस्सा कोई मामूली किस्सा नहीं है कि जिसे कुरान ने क्या कहा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस, ए नबी हम आपको किस्सों में बेहतरीन किस्सा बता रहे हैं। और फिर खुदा ने नबी अल्लाह यूसुफ का किस्सा बयान किया कि जब एक रोज ख्वाब में देखा 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद यूसुफ के आगे सजदा रेज हैं, तो परेशान हुए बाबा नबी अल्लाह याकूब से ताबीर पूछी, नबी अल्लाह याकूब ने बताया कि खुदा तुम्हें नबूवत के ओहदे से नवाजेगा और ये राज अपने भाइयों से छुपा कर रखना। तो अब ये पूरा तफसीली वाकया है, एक दास्तान है नबी अल्लाह यूसुफ की। लेकिन इस दास्तान में वो कौन सी बातें हैं कि जो हमारे वक्त के इमाम में भी पाई जाती है, जो मुश्तरक है, जो कॉमन है। आइम्मा ने अपनी अहादीस में दो बातों की तरफ इशारा फरमाया। पांचवे सरकार, कल जो हदीस पेश की थी जिसके जमीन में बात चल रही थी, वो किन इमाम से थी? मेरे नौजवान दोस्तों को यकीनन याद होगा, वो मेरे चौथे इमाम से थी। आज जिस हदीस को पेश किया जा रहा है वो उन्हीं के फर्जंद पांचवे आका मौला हजरत इमाम बाकिरुल उलूम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। पांचवे امام سے روایت ہے، راوی کا نام ہے ابو یزید کناسی، پانچویں امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام قائم کا تذکرہ چھڑ جاتا ہے. اللہ اکبر، ائمہ بڑا پسند کیا کرتے تھے بارہویں امام کے تذکرے کو. کیوں؟ کیونکہ ائمہ جانتے تھے کہ ایک طویل دور ایسا ہوگا کہ جب ہمارے چاہنے والے حجت خدا سے مباشرتاً بلا واسطہ ملاقات نہیں کر پائیں گے، جب حجت خدا غیبت میں ہوگی تو اس دور میں کون سی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جس سے یہ شیعہ، یہ چاہنے والے، یہ موالیان، یہ محبان ہدایت پائیں گے؟ وہ یہی ائمہ کی روایات اور احادیث ہی تو ہیں. میں نے پیش کیا تھا نا کہ خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے کہ جو سیاہ و سفید کو دیکھ کر ہم پر ایمان لے آئے. وہ کیا سیاہ و سفید ہے؟ وہ کتب میں موجود آل محمد کی حدیثیں ہی تو ہیں. تو آل محمد نے بڑا پسند فرمایا اس ذکر کو. تو اب پانچویں امام راوی کے ساتھ محو گفتگو ہیں، اچانک میرے مولا فرماتے ہیں ان للقائم منا سنۃ من نبی اللہ یوسف، ہمارے قائم میں نبی اللہ یوسف کی بھی ایک سنت پائی جاتی ہے. اور وہ کیا سنت ہے؟ راوی نے سوال کیا، وما ہی یبن رسول اللہ، فرزند رسول وہ کیا سنت ہے؟ جواب دیا الغیبۃ والحیرہ، دو لفظ ہیں لیکن بات ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ غیبت اور حیرت، پریشانی، یہ دو سنتیں ہیں کہ جو نبی اللہ یوسف میں بھی تھی اور ہمارے وقت کے امام میں بھی پائی جاتی ہیں. اللہ اکبر، لوگ جب قرآن کے ان حقائق کو سنتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، کیا نبی اللہ یوسف بھی غیبت میں گئے تھے؟ اعزان محترم، جو مبصرین ہیں، مفسرین ہیں، وہ اس سورہ یوسف کی تفسیر میں جن نکات کو، جن حسین نکات کو بیان کرتے ہیں، اس کے ذیل میں لکھتے ہیں نبی اللہ یوسف کی کم از کم پانچ غیبتیں ہیں. اللہ اکبر، ہر ہر غیبت میں دوسری غیبت سے کچھ اختلاف ہے، کچھ فرق ہے. سب سے پہلی غیبت، نبی اللہ یوسف کی وہ غیبت کہ جو ان کے بھائیوں کی نظروں میں تھی. اللہ اکبر، توجہ میرے ساتھ ہے، پریشان نہ ہوئیے گا. نبی اللہ یوسف اپنی کمسنی کے عالم میں جب بابا نے نصیحت کی کہ اے بیٹے یوسف، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کہیں ایسا نہ ہو حسد کرنے لگ جائیں. اس موقع پر نبی اللہ یوسف کے بھائی کے جو ایک دن اپنے بابا سے اجازت لے کر یوسف کو شکار کے لیے لے چلے ہیں، اور وہاں وہ پورا ماجرا ہوا کہ جعلی خون لگایا گیا قمیص پر، اور بابا کو لا کر بتایا کہ بابا دیکھیں یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا. اس موقع پر نبی اللہ یوسف، ان کا شخص اور پرسن اور ان کی ذات تو اپنے بھائیوں کی نگاہ میں تھی، لیکن نبی اللہ یوسف کا رتبہ بھائیوں سے غیبت میں تھا. اگر پہچانتے کہ یہ حجت خدا ہے، یہ ولی خدا ہے، یہ نبی خدا ہے، تو کبھی شاید ایسا کام نہ کرتے، کبھی ایسی غلطی نہ کرتے. اس غلطی کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے بابا بغیر کسی سبب کے ہمارے بھائی کو ہم سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں، ہم سے زیادہ محبت دیتے ہیں. توجہ ہے، نبی اللہ یوسف کی پہلی غیبت، بھائیوں کی نگاہ میں یوسف کی جسمانی وجود تو ہے، یوسف کے جسم تو موجود ہے، لیکن یوسف کی شخصیت غیبت میں ہے. دیکھ رہے ہیں لیکن معرفت نہیں رکھتے، پہچانتے نہیں ہیں. یہ پہلی غیبت. ذرا قصے کو آگے بڑھائیے، کیا کیا؟ جب بھائیوں نے مشورہ کیا اور کسی نے کہا اقتلوہ، یوسف کو قتل کر دو، تو ایک بھائی کے جو ذرا سمجھدار تھا کہنے لگا کہ اسے قتل نہ کرو، ولقوہ فی غیابت الجب، اسے، اب یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ولقوہ فی غیابت الجب، اسے پانی کے کنویں میں ڈال دو. کیوں؟ یلتقط ہو بعض السیارہ، بعض قافلے جو آئیں گے یہاں سے پانی بھرنے کے لیے ڈول ڈالیں گے، وہ یوسف کو اٹھا لیں گے اور اپنے ساتھ غلام بنا کر لے جائیں گے. خود نبی اللہ یوسف نے جتنا وقت اس کنویں میں گزارا، نبی تھے، خلق خدا کی نظروں سے غائب تھے یا نہیں تھے؟ اللہ اکبر، توجہ ہے، کنویں کی غیبت، یہ دوسری غیبت ہے. اللہ اکبر، بات اور آگے بڑھتی ہے. ایک قافلہ آیا، فادلا دلوہ، اپنے ڈول کو کنویں میں ڈالا، قالا یا بشرا ہذا غلام، کنویں میں تو ایک جوان ہے، ہم تو پانی لینے آئے تھے، یہاں تو ایک خادم مل گیا. उन्होंने यूसुफ को अपने साथ ले लिया। फिर क्या किया, कुरान की आयत कहती है वशरहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, उन लोगों ने यूसुफ को बाजार मिस्र में बहुत ही कम दिरहमों में बेच दिया। लेकिन इस कम दिरहमों पर बेच देने को खुदा क्या कह रहा है, अल्लाहु अकबर, वकानू फीही मिन जाहिदीन, वो लोग जाहिदीन में से थे, जोहद रखने वाले अफराद में से थे, ज्यादा माले दुनिया की लालच नहीं थी। मेरा आपसे सवाल है, जिन लोगों ने यूसुफ को कुएं से निकाला, यूसुफ की जात तो उनके सामने थी, मगर क्या यूसुफ के मर्तबे को पहचानते थे, क्या जानते थे कि ये याकूब के फर्जंद हैं, ये इब्राहिम के पोते हैं, ये खुद अल्लाह के नबी हैं? नहीं, उन लोगों की निगाहों में यूसुफ का जिस्म तो था लेकिन यूसुफ की शख्सियत नहीं थी। तवज्जो है, कलर्ज किया था ना, हमारे वक्त की इमाम की गैबत के बारे में उलमा का एक कवि नजरिया यही है कि वक्त के इमाम का जिस्म अथर उनकी ज़ाते गिरामी इसी आलम में है, लेकिन उनकी शख्सियत उनकी पर्सनैलिटी गैबत में है। लोग देखते हैं मगर पहचान नहीं पाते हैं। अगर तवज्जोहात मेरे साथ हैं तो एक दुरूद पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। परेशान हो रहे हैं, क्या यूसुफ इतनी गैबतें थी? अल्लाह अकबर, ये थी तीसरी गैबत। बाजार मिस्र में अजीज मिस्र ने यूसुफ को खरीदा, क्या समझ के खरीदा? अल्लाह अकबर, एक गुलाम समझ के खरीदा। औ नत्तखिदहू वलदा, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे। यूसुफ की जात उनकी निगाहों में भी थी लेकिन शख्सियत गैबत में थी। अल्लाह अकबर, अब तक जितने अफराद गुजरे नबी अल्लाह याकूब के अलावा, उन तमाम की निगाहों में यूसुफ की शख्सियत गैबत में थी। लोग जिस्म को देख रहे थे लेकिन कोई हकीकत को दर्क नहीं कर पा रहा था, कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये हुज्जत खुदा है। अल्लाह अकबर, नबी अल्लाह यूसुफ अजीज मिस्र के घर में आ गए। वो सारा कमसिनी का वाकया, वो जुलेखा का मामला, यूसुफ का कैद में जाना 7 बरस तक, और बाज रिवायात में और भी ज्यादा कैद खाने में गुजारना। अल्लाह अकबर, तवज्जो कीजिएगा, ये खुद एक गैबत है। नबी अल्लाह का दुनिया से दूर कैद खाने में इतने अरसे रहना, ये क्या है? ये गैबत नहीं है तो क्या है? एक और गैबत यूसुफ की। लेकिन बात यहां भी नहीं रुकती। जब 7 बरस गुजर गए और वो जो अजीज मिस्र ने ख्वाब देखा कि जिसकी ताबीर बड़े बड़े मुनज्जिमों और मुअब्बिरों को नहीं पता थी, फकत नबी अल्लाह यूसुफ एक जवान को पता थी, तो नबी अल्लाह यूसुफ ने वो ताबीर बताई। नतीजे में उन्हें इजअलनी अला खजाइन अल-अर्ध, उन्होंने खुद वजारत खजाना का कलमदान मांगा, क्योंकि वो जानते थे कि इक्तसाद हुज्जत खुदा से अच्छा कोई नहीं जानता। तवज्जो है, इक्तसाद का कलमदान मांगा, और फिर वो जो मिस्र के हालात को तब्दील कर दिया, वो जो हालात थे उन्हें किस तरह से खुशहाल बना दिया, खुद ये भी तो एक सुन्नत यूसुफ है जो मेरे वक्त के इमाम में जारी होगी। जब जहूर फरमाएंगे तो दुनिया बदतरीन हालात का शिकार होगी, लेकिन आका के जहूर के बाद आका की हिकमत अमली से ये दुनिया बदतरीन से बेहतरीन हो जाएगी। एक दुरूद पढ़िए ताजील फरज के लिए। बात पहुंच रही, तवज्जो है, बहुत तेजी से मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, मुझे मवारी से अंबिया बयान करनी है, आखिरी सुन्नत है कि जो बयान कर रहा हूं। अब इसके बाद गैबत का एक नया मरहला शुरू होता है। किसकी गैबत? गैबत यूसुफी। वो नया मरहला क्या है कि जब कहत आया मिस्र में और मिस्र के अतराफ में, इमाम के अजीब जुमले हैं, याकूब और यूसुफ के दरमियान फकत 18 दिन का फासला था। उस जमाने के एतबार से कि जब जानवरों पर सफर किया जाता था, ये फासला कुछ भी नहीं है, बहुत कम फासला था, लेकिन इसके बावजूद किसी को खबर ना हुई कि हमसे 18 रोज दूर जो शहर है या जो ममलिकत है उसका हाकिम हमारा ही भाई यूसुफ है, ये गैबत नहीं है तो क्या है? फिर नबी अल्लाह यूसुफ जब कहत आया और यूसुफ के भाई अपने घर से चले हैं राशन और गल्ले के हुसूल के लिए, नबी अल्लाह यूसुफ से मुलाकात हुई, मेरा आपसे सवाल है, क्या यूसुफ ने भाइयों को नहीं पहचाना? नहीं, यूसुफ ने भाइयों को पहचान लिया। क्या भाइयों ने भी यूसुफ को पहचान लिया? नहीं अजीजों, भाइयों की निगाह में यूसुफ गैबत में थे, यूसुफ की शख्सियत पोशीदा थी। ये एक और गैबत है। इतनी गैबतें एक नबी में जमा हो गई, लोगों को एक इमाम की एक गैबत हजम नहीं हो रही है। तवज्जो है कुरान को, मैंने कल भी ये जुमला अर्ज किया था, आज फिर तकरार कर रहा हूं। अपने अकीदे को मजबूत रखिए गैबत पर, इमामत पर, महदवियत पर। अगर किसी ने सही माना में कुरान पढ़ लिया, समझ लिया, तो कभी मेरे 12वें इमाम के अकीदे पर, उनकी हयात पर, उनकी गैबत पर एतराज नहीं करेगा। एक सलावत पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मरतबा भाइयों ने मुलाकात की, गल्ला लिया, यूसुफ ने कीमत भी उनके सामान में रख दी, लेकिन एक शर्त लगाई, अगर अगली बार गल्ला और राशन चाहिए हो तो अपने भाई को भी साथ लाना। उस वक्त भी भाइयों को शक तक न हुआ कि ये यूसुफ है। अल्लाह अकबर, ये गैबत नहीं है तो क्या है? यहां तक कि दोबारा जब भाई बिन्यामीन को लेकर आए, बिन्यामीन पहचान गए लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना। अल्लाह अकबर, इनके लिए अभी भी यूसुफ गैबत में है। पांचवें इमाम फरमाते हैं, जिस तरह यूसुफ अपने भाइयों के लिए गैबत में थे, जिस तरह यूसुफ की शख्सियत पोशीदा थी, हमारे कायम आले मोहम्मद की शख्सियत भी लोगों से पोशीदा रहेगी। यमशी बैनहुम फी अस्वाकहिम, रिवायत के जुमले, हमारे कायम भी लोगों के दरमियान इनके बाजारों में इनके साथ चला फिरा करेंगे। अजीब जुमले हैं रिवायत के। वयतअ अफराशहुम, उनके बिस्तर बिछाते होंगे। अल्लाह अकबर, अजीब ताबीर है, मैं कासिर हूं इस जुमले की तफसीर करने से, रिवायत अमानतन पेश कर रहा हूं। वलाकिन्नहुम ला यारिफूनहु, लेकिन लोग अपने वक्त के इमाम को पहचान नहीं पाएंगे। हत्ता याजन अल्लाह, जब तक अल्लाह इज़्ज़त ना दे दे कि कायम खुद इन्हें अपनी पहचान कराए। जिस तरह वहां जब तक यूसुफ ने अपने भाइयों को यह नहीं कहा था, अना यूसुफ वहादा अखी, मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है, भाई नहीं पहचान पाए थे। इसी तरह जब तक हमारे कायम इन लोगों को अपनी पहचान नहीं करवाएंगे, ये लोग भी कायम को नहीं पहचान पाएंगे। अल्लाह अकबर, कितनी मुमाथलतें हैं, कितनी मुशाबहतें हैं। एक दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सल्ली अला मोहम्मद। यहां बात खत्म हुई यूसुफ की एक सुन्नत की, या यूं कहिए खुदा की एक सुन्नत की, कि जो यूसुफ में भी जारी हो रही है, कि जो मेरे वक्त के इमाम में भी जारी हो रही है। क्या फकत एक ही सुन्नत है? नहीं, एक और सुन्नत है, वो जो नबी अल्लाह मूसा के हवाले से कल बयान हुई थी, रिवायात शरीफा में वही सुन्नत नबी अल्लाह यूसुफ के हवाले से भी बयान हुई है, जो मेरे कायम इमाम में पाई जाती है। अल्लाह अकबर। और रावी कौन है? बड़ा अजीम रावी है, शाह अब्दुल अजीम हसनी रहमतुल्लाह अलैह। कौन है ये शाह अब्दुल अदीम? मकामात मुकद्दसा की ज्यारत पर जाने वाले वाकिफ हैं कि कौन है। तेहरान में इनका मजार है, कि जिनके बारे में रिवायत के जुमले हैं कि जिसने शाह अब्दुल अदीम की ज्यारत रह में कर ली, गोया गोया उसने सैयदुल शहदा आका हुसैन की ज्यारत कर ली। ये मकाम मरतबा कैसे मिला शाह अब्दुल अदीम को? दो जुमले मुकदमतन और फिर हदीस पर। ये शाह अब्दुल अदीम नवे इमाम के खास असहाब में से थे, खुद सादात में से हैं, हसनी सादात में से हैं और नवे इमाम के खास असहाब में से हैं। इनका तरीक़ेकार ये था, हर कुछ अरसे बाद नवे इमाम की खिदमत में शर्फयाब होते थे और नवे इमाम को अकीदा सुनाते थे। अल्लाहु अकबर। ऐ फरजंद रसूल, आप अइम्मा पर मेरा ये अकीदा है, अगर सही है तो ताईद फरमा दीजिए वरना तशही फरमा दीजिए। आले मोहम्मद मुखातिब करके कहते थे, ये जो तुम्हारा अकीदा है यही हम आले मोहम्मद का अकीदा है। अल्लाहु अकबर। अकीदे की अहमियत को समझ रहे हैं। अब जाकर अब्दुल अदीम हसनी को यह मकाम मिला। यही अब्दुल अदीम हसनी खुद बयान करते हैं, नाम अब्दुल अदीम, कुनियत अबुल कासिम। कहते हैं, एक रोज में नवे सरकार हजरत इमाम मोहम्मद इबन अली तकी जवाद अलैहिस्सलाम, एक रोज मैं नवे आका की खिदमत में पहुंचा और तवज्जो कीजिएगा, रिवायत के अजीब जुमले हैं, मेरा कज़्द ये था, मेरी नीयत और इरादा ये था कि मैं नवे इमाम से कायमे आले मोहम्मद के बारे में सवाल करूंगा। अल्लाह अकबर। कहते हैं जब मैं पहुंचा हूं बाद सलाम फब्तदअनी बिल कलाम, इससे पहले कि अपना सवाल अपनी ख्वाहिश इमाम की बारगाह में रखता, इमाम ने कायम आले मोहम्मद के मौजू पर बात को छेड़ दिया। अल्लाह अकबर, ये आले मोहम्मद है, किस कदर पसंदीदा मौजू है ये आले मोहम्मद का कि जिसे हम यहां से बयान कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इमाम ने सवाल करने से पहले कलाम किया और फरमाने लगे कि ए अब्दुल अदीम हसनी, ये कायम कौन है? ये कायम मेरी नस्ल में मेरे तीसरे बेटे हैं। नवे इमाम बात कर रहे हैं, मेरे तीसरे बेटे हैं। इनकी सिफत क्या है? अल्लज़ी यजबु अन युन्तज़रा फी गैबतिही व युताअ इंदा ज़ुहूरिही। उनकी निस्बत से चाहने वालों की दो जिम्मेदारी हैं, दो वाजिब हैं कि जब वो गैबत में हो तो उनका इंतजार करें और जब जहूर हो जाए तो उनकी इताअत करें, दो वाजिब। फिर फरमाते हैं, और ए अब्दुल अदीम हसनी, कायम आले मोहम्मद की गैबत में उनके अकीदे पर हमेशा साबित कदम रहना, कभी शक ना करना। क्यों? क्योंकि अगर कयामत से पहले एक दिन भी बाकी रह जाए और कायम का जहूर ना हुआ हो, लतव्वलल्लाहु ज़ालिकल यौम, खुदा उस दिन को इतना तूलानी कर देगा, हत्ता यजहर, यहां तक कि हमारा कायम जहूर फरमाएंगे, न सिर्फ जहूर फरमाएंगे, व यमलउल अर्ज अदलन व किस्ता कमा मुलअत ज़ुल्मन व जौरा, और उस एक दिन को खुदा इतना तूलानी कर देगा, इतना तवील कर देगा कि हमारे कायम रूए जमीन को अदल इंसाफ से भर देंगे, जैसे वो उनसे पहले जुल्म और जोर से भरी हुई होगी। मुराद क्या है इमाम की? क्या एक दिन में ये सब कुछ होगा? नहीं, इमाम अकीदे को पुख्ता करना चाह रहे हैं। इमाम हम चाहने वालों को, गैबत के मोमिनीन को पैगाम दे रहे हैं, अरे खुदा जहूर में ताजील करे, लेकिन ये गैबत जितनी तवील हो जाए कभी शक का शिकार ना होना, क्योंकि ये अम्र जहूर हजरत हुज्जत इस कदर अटल है, इस कदर यकीनी है कि कयामत में एक दिन भी रह जाएगा तो ये काम जरूर होगा। अल्लाह अकबर। जब तक जहूर न हो जाए कयामत नहीं हो सकती है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात वाजे हो रही है? अब्दुल अदीम हसनी जैसी हस्ती से मेरे नवे इमाम का मुकालमा, और फिर इमाम फरमाते हैं कि ए अब्दुल अदीम, अल्लाह अकबर, ए अब्दुल अदीम, हमारे शिया के जो गैबत के दौर में होंगे उन्हें हमारा ये पैगाम पहुंचाओ, अफ़ज़ल अमाल शियातिना इंतज़ारुल फरज, गैबत के शियों के लिए अफजल तरीन अमल क्या है? कायम के ज़ुहूर इंतजार करना, फकत इस बात पर अकीदा रख लिया जाए, अल्लाह अकबर, और अकीदे को मजबूत रखा जाए, गैबत जितनी ही तूलानी क्यों ना हो जाए, हुज्जत खुदा के जहूर और उनकी गैबत पर एतकाद मजबूत रखा जाए। यहां तक पहुंचकर फिर इमाम अब्दुल अदीम हसनी को मुखातिब करके फरमाते हैं, नबी अल्लाह यूसुफ की सुन्नत ये जो कायम इमाम में जारी होगी, ए अब्दुल अदीम, खुदा हमारे कायम में नबी अल्लाह यूसुफ की सुन्नत को बयान करेगा, सुन्नत को जारी करेगा। अब्दुल अदीम कोई मामूली हस्ती तो नहीं है, अस्हाबे बावफाए अहले बैत में से हैं, बड़ा मकाम है, खुद हसनी सादात में से हैं, आले मोहम्मद की हदीस से आचना है। सवाल क्या है? फरजंद रसूल, आप कौन सी सुन्नत की बात कर रहे हैं? वही सुन्नत जो हजरत बाकर ने बताई थी कि गैबत और हीरत, लोग शक और तरदीद में होंगे क्या, और गैबत में जाएंगे, क्या यही सुन्नत है? इमाम फरमाते हैं, वो तो पाई जाती हैं, वो तो हमारे जद बता चुके, हम एक नई सुन्नत बता रहे हैं। वो क्या है? युस्लिहुल्लाहु लहु अमरहु फी लैलतिन, जिस तरह से कैद खाने में नबी अल्लाह यूसुफ थे, अचानक एक रात अजीज मिस्र को एक ऐसा ख्वाब आया कि जिस एक रात के ख्वाब ने यूसुफ को एक कैदी से उठाकर मिस्र का हाकिम बना दिया, जिस तरह से खुदा ने एक रात में यूसुफ के मुकम्मल उमूर को सही कर दिया, अपनी मंशा के मुताबिक कर दिया, दुरुस्त सम्त पर ले आया, बिल्कुल इसी तरह एक शब लगेगी खुदा को हमारे कायम के जहूर की राह को हमवार करने में। अल्लाह अकबर। इतनी तेजी से हालात बदलेंगे कि कायम गोया एक रात में उमूर की इसलाह होती चली जाएगी, जहूर के रुकावटें हटती चली जाएंगी और हमारे कायम का जहूर हो जाएगा। मौला हम शियों की जिम्मेदारी क्या है, क्या करें उस दिन तक, उस वक्त तक, जहूर के लहजे तक? फरमाया इंतजार करो। क्यों? क्योंकि शियों के लिए अफजल तरीन अमल فرج کا اور ظہور کا انتظار کرنا ہے. ایک صلوات پڑھی محمد وال محمد پر. اذان محترم توجہات میرے ساتھ ہیں, تھک کر تو نہیں سن رہے, یہ قرآنی قصے ہیں کہ جو در حقیقت میرے وقت کے امام کی غیبت پر دلیل ہیں, اور قرآنی دلیل کو کوئی رد نہیں کر سکتا. بس عزیزوں خلاصہ کلام کرتا چلوں, مہدویت اور سنن انبیاء کی بحث کو مکمل کر رہے ہیں ہم, اور یہ یاد رکھیے گا انبیاء 124,000 ہیں, ہر نبی کی سنت میرے قائم میں جاری ہونی ہے. ان انبیاء میں سے ہم سب کو کیسے جان سکتے ہیں؟ قرآن نے فقط 25 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا, ان 25 میں سے بھی ہم نے فقط 6 یا 7 یا 8 انبیاء زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں وہ اور ان کی سنتوں کو پیش کیا, اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہ قطرہ ہے معرفت امام زمانہ کے سمندر سے. کتنی ایسی ہستیاں ہیں, کتنے ایسے انبیاء ہیں کہ جن کی سنتیں کہ جو قائم آل محمد میں پائی جاتی ہیں, کہ جو روایات میں موجود ہیں, میں نے ذکر نہیں کی, دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا. اب یہ مومنین کی ذمہ داری ہے کہ مطالعے کو وسیع کریں اور مہدویت کے موضوع پر اپنے عقیدے کو اپنی معلومات کو پختہ کرتے چلے جائیں. یہاں مہدویت اور سنن انبیاء کی بحث کو روکتے ہیں اور بحث کے دوسرے حصے مہدویت اور موارث انبیاء کے موضوع میں داخل ہوتے ہیں. اس سے پہلے کہ عرض کروں کہ انبیاء کی میراث اور امام زمانہ کا کیا تعلق ہے, یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ میراث انبیاء کے حوالے سے مختصر سی تمہید و تفصیل اپنے ناظرین و سامعین کے لیے وعدے کر دوں. قرآن کی روشنی میں میراث کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہوا کرتی ہیں. ایک وہ میراث کے جو میراث فقہی ہوا کرتی ہے, جب کوئی بھی عزیز چلا جاتا ہے تو اس کی آل و اولاد میں وہ جو فقہ میں علم فقہ میں احکام موجود ہیں اس کے مطابق اس میت کا مال و اسباب تقسیم کر دیا جاتا ہے. ایک یہ میراث ہے کہ جسے میراث فقہی کہتے ہیں, اور ایک میراث میراث استفائی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ میراث ہے کہ جو خدا کے چنندہ بندوں میں, خدا کی حجتوں میں یک کے بعد دیگرے چلتی رہتی ہے. ہماری ساری گفتگو اس میراث استفائی سے ہے, میراث فقہی سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے. پھر میراث استفائی یا تو اخروی ہے, آخرت کی ہے, یا دنیا کی ہے. اخروی کی مثال کیا ہے؟ اخروی کی مثال خدا ارشاد فرماتا ہے, تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا, یہ جو جنت ہے یہ ہم اپنے ان بندوں کی میراث قرار دیتے ہیں کہ جو ہمارے تقی بندے ہیں, باتقوا بندے ہیں. کیا آل محمد سے زیادہ بھی دنیا میں کوئی باتقوا ہے؟ اصلا وہ علی کے جسے رسول نے فرما دیا, یا علی حبک تقوا و ایمان, جنت ملے گی تقی افراد کو, باتقوا افراد کو. اس علی کا عالم کیا ہوگا کہ جسے رسول نے کہہ دیا, علی تمہاری محبت ہی تقوا اور ایمان ہے. تو اب یہ جنت یہ اخروی میراث ہے. ایک صلوات پڑھی امیر المؤمنین کی عظمت پر. یہ جنت یہ وہ اخروی میراث ہے کہ جو خدا کے متقی بندوں اس کی حجتوں میں چلتی رہتی ہے. یہ ہے میراث اخروی. میراث دنیاوی کیا ہے؟ اس کی بھی دو قسمیں کی ہیں علماء نے. اب یہ ساری بحث واضح ہوگی تو حاضرین میں مطالعے کی تشویق ہوگی, مطالعے کا شوق بڑھے گا. ہم تو فقط ایک حصے کو بیان کریں گے, باقی حصوں پر مطالعہ کرنا میرے سامعین کی ذمہ داری ہے, ان پر تحقیق کرنا میرے بافہم مجمع کی ذمہ داری ہے. میراث دنیاوی کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ میراث کے جو مومن کو کافر سے ملتی ہے. المومنین پریشان ہو رہے ہیں, قرآن کی آیت پیش کر دوں, یہ کون سی میراث ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. امام زمانہ کی حقانیت اور ان کے ظہور پر قرآن کی آیت بہت بڑی دلیل ہے. سورہ مبارکہ قصص آیت 5, ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے. اللہ اکبر. وہ خدا کے جو آیت تطہیر میں انما یرید اللہ کہہ کر اپنے ارادے کو بتا رہا ہے, اس آیت میں کیا کہتا ہے؟ وَنُرِيدُ, ہم نے ارادہ کر لیا ہے, ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض, کہ جن لوگوں کو زمین پر کمزور سمجھا گیا. وہ کون ہے؟ وہ آل محمد ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں. हम उन पर एहसान करेंगे, हम उनके साथ मिन्नत करेंगे। वो क्या एहसान होगा? नजअलहुम अइम्मा, हम उन्हें इमाम करार देंगे। व नजअलहुमुल वारिसीन, और उन्हीं को जमीन का वारिस करार देंगे। अरे ये काफिर जितनी चाहे इस रूए जमीन पर हुकूमत रखे, ये फिरौन और नमरूद जितनी चाहे इस रूए जमीन पर हुकूमत कर ले, लेकिन आखिरी नतीजा, आखिरी हुकूमत फकत आले मोहम्मद की है। ये वो मीरास है, दुनियावी मीरास, दुनिया की हुकूमत के जो काफिर से मोमिन को मिलती है। एक और भी मीरास है कि जो मोमिन से मोमिन को मिलती है, और ये हमारा मौजू है। क्यों? क्योंकि हम अंबिया की उन मीरासों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो आले मोहम्मद तक आई, और आले मोहम्मद से ये सिलसिला चलता हुआ मेरे बारे इमाम हजरत कायम आले मोहम्मद अज्जलल्लाह तआला फरजहु शरीफ। कायम आले मोहम्मद तक ये सिलसिला आ गया बगैर किसी तफसील के। यहां तक मतालब वाजे हैं, मीरास अंबिया से क्या मुराद है ये बात वाजे है। तो गुफ्तगू को एक मंजिल और आगे बढ़ाऊं, ज्यादा इंतजार नहीं कराऊंगा। सबसे पहली मीरास अंबिया के जो मेरे वक्त के इमाम तक पहुंची, अपनी जेब से नहीं, हदीस इमाम से, छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातो वस्सलाम। छठे इमाम अपने एक सहाबी से सवाल करते हैं, क्या तुम जानते हो कि कमीस यूसुफ क्या है? नबी अल्लाह यूसुफ की कमीज का क्या मान रहे? जब यूसुफ की सुन्नत का तज़किरा है तो फिर मीरास भी नबी अल्लाह यूसुफ की मीरास से बात का आगाज करेंगे, ताकि सामईन के जहनों में मतालब मरबूत रहे, महफूज रहे। ये कमीस यूसुफ क्या है जानते हैं अजीजों? ये कोई मामूली कमीस नहीं है जो कोई पहनता है, नहीं, ये अंबिया की मीरात है। ये वो कमीज है कि जिसके बारे में कुरान की आयत कहती है कि जब नबी अल्लाह यूसुफ ने मिस्र में, अल्लाह अकबर, नहीं अजीजों रिवायत इब्तिदा से सुनिए ताकि लुत्फ महसूस करें, फिर कुरान की रोशनी में बयान करूंगा। इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम मुफद्दल बिन उमर जैसा रावी, अजीम रावी, इमाम मुखातिब करके फरमाते हैं कि जब नबी अल्लाह इब्राहिम को आग में डाला गया, मंजनीक के जरिए से आग में नमरूद ने फेंक दिया, आसमान से जबरील एक जन्नत की कमीज लेकर नाजिल हुए। अल्लाह अकबर, एक खलील खुदा इब्राहिम है कि जिनके लिए जन्नत से लिबास आ रहा है, और एक फातिमा के बेटे हैं कि जिनके लिए जन्नत से लिबास आ रहा है। हाँ, एक फर्क है अजीजों, तवज्जो कीजिएगा, यहाँ अल्लाह के हुक्म से लिबास आ रहा है, यहाँ फातिमा के हुक्म पर लिबास आ रहा है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये कमीज नबी अल्लाह इब्राहिम के लिए जबरई जन्नत से लेकर उतरे, और जब इब्राहिम ने इस कमीज को पहन लिया, फलम्मा अलबसहा मा अहस हर्रन वला बर्दा, ना इब्राहिम को आग की तपिश का एहसास होता, ना मौसम की सर्दी का एहसास होता। ये मोजजाती कमीज के जो जन्नत से आई थी, फलम्मा करुबा मौतुहू या अजलहू, जब नबी अल्लाह इब्राहिम की मौत का वक्त करीब आया। नबी अल्लाह इब्राहिम का शजरा तो मोमिनीन जानते हैं ना, इब्राहिम की दो औलादें थी, एक इसहाक है एक याकूब है। याकूब वो है कि जिनसे नबी अल्लाह यूसुफ की विलादत हुई और नबुवत का सिलसिला रुक गया। माजरत, नबी अल्लाह इब्राहिम के दो बेटे हैं, इस्माइल और इसहाक। इसहाक वो नबी हैं कि जिनके फर्जंद याकूब हैं, और याकूब के बेटे यूसुफ हैं, और यहाँ नबूवत का सिलसिला रुक गया। दूसरी जानिब नबी अल्लाह इस्माइल वो हैं कि जिनसे सिलसिला नस्ल इब्राहिम चलता चला गया, यहाँ तक के हमारे नबी रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। तवज्जो कीजिएगा, नबी अल्लाह इब्राहिम की मौत का वक्त जब करीब आ गया, तो ये मोजजाती, ये जन्नती कमीज, ये आसमानी मीरात नबूवत, क्या किया नबी अल्लाह इब्राहिम ने? नबी अल्लाह इब्राहिम ने इसे एक तावीज की सूरत में बांध दिया, और नबी अल्लाह इसहाक अपने दूसरे फर्जंद के जिस्म पर इसे लटका दिया। ये वही वैसे ही महफूज रही, यहां तक कि जब नबी अल्लाह इसहाक की मौत का वक्त करीब आया, तो उन्होंने याकूब को दे दिया। इस कमीज की अहमियत क्या होगी जो इतने अंबियाए खुदा के पास रही है। तवज्जो है, जब याकूब के बड़े सिन्नी तक पहुंचे और यूसुफ की विलादत हुई तो याकूब ने इस कमीज को यूसुफ के जिस्म पर बांध दिया। यूं ये अंबिया की कमीज इब्राहिम से यूसुफ तक पहुंची। ये कमीज नबी अल्लाह यूसुफ के पास महफूज रही। कब तक? यहां तक के नबी अल्लाह यूसुफ अजीज मिस्र बन गए, उनके भाई आकर उनसे मुलाकात कर गए, लेकिन किसी को खबर न थी कि ये अल्लाह के नबी यूसुफ गैबत में थे। हमने पेश कर दिया ना, यहां तक के एक रोज नबी अल्लाह यूसुफ ने उस कमीज को खोलकर निकाला और पहन लिया। जूं ही यूसुफ ने, कितने दिन का फासला था मैं अर्ज कर चुका हूं इब्तिदाए मजलिस में, याकूब और यूसुफ में 18 दिन की मसाफत थी, लेकिन कुरान कहता है कि जैसे ही यूसुफ ने उस लिबास को, उस कमीज से इब्राहिमी को निकाल कर पहन लिया, जेबतन कर लिया, याकूब 18 दिन के फासले पर, कई सौ मील के फासले पर बैठकर क्या कहते हैं, इन्नी ला अजदु रीहा यूसुफ, अरे मुझे याकूब को यूसुफ की खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर, ये वो कमीज है यूसुफ की है। फिर क्या हुआ, जब यूसुफ के भाई आए और यूसुफ ने उन्हें बताया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, गैबत से जहूर के आलम में आए, पर्दा उठा लिया, फिर क्या हुआ, वो कमीज यूसुफ ने अपने भाइयों को दी, क्योंकि भाइयों ने बताया था कि बाबा की कैफियत आपकी जुदाई में ये है, वह अबयद्दत ऐनाहु मिनल हुज्न वहुवा कदीम, बाबा की आंखें रो रो कर सफेद हो चुकी हैं। तो अब यूसुफ ने जब ये जुमला सुना कि बाबा नबी अल्लाह याकूब नाबीना हो गए हैं, यूसुफ ने भाइयों से ये नहीं कहा कि याकूब नबी हैं, उनसे कहना कि अल्लाह से दुआ करें शिफा मिल जाएगी। तवज्जो है, वसीला, वसीले की अहमियत कुरान की निगाह में सुनिए। यूसुफ ने ये नहीं कहा बाबा नबी हैं, दुआ करें कबूल हो जाएगी, ये भी नहीं कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं दुआ करूंगा डायरेक्ट बगैर वसीले के कबूल हो जाएगी, नहीं। रिवायत और आयत कहती है यूसुफ ने अपनी कमीज अपने भाइयों के हवाले की और कहा जाओ ये कमीज बाबा को दो। फिर क्या हुआ, जब रावी यूसुफ का एक बेटा, याकूब का एक बेटा, यूसुफ का एक भाई नबी अल्लाह याकूब के पास हाजिर होता है तो क्या किया, अलकाहु अला वजही, कमीसे इब्राहिमी को, कमीसे यूसुफी को अपने बाबा के चेहरे पर डाला। यूसुफ नबी अल्लाह हैं, चाहते तो दुआ कर लेते, याकूब नबी खुदा हैं, चाहते तो दुआ कर लेते, लेकिन वसीला इख्तियार किया, यूसुफ ने अपनी कमीज को भेजा, इतना इंतजार कराया नबी खुदा को, कमीज आ गई और आने के बाद उसे याकूब के चेहरे पर डाल दिया। कुरान कहता है फरतद्दा बसीरा, याकूब की बीनाई लौट आई। अल्लाह अकबर, अगर आज हम अहले बैत की याद में जो अलम का फरेरा मौजूद है, अगर इससे अपने आप को मस करके शिफा मांगे तो कोई एतराज नहीं करना। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे नौजवान तवज्जो कीजिए, 13वां पारा सूरह यूसुफ, वसीले की सबसे बड़ी दलील, दो अंबिया खुदा के दरमियान का मामला है, मेरी आपकी औकात और हैसियत ही क्या है, दो नबी खुदा के दरमियान का मामला है, मगर कमीज कपड़ा लिबास वसीला बन रहा है। अल्लाह अकबर, बात पहुंच रही है। ये कमीज यूसुफी के जो मोजजाती है, करामाती है, कि जो एक मरतबा इब्राहिम को आग से बचा ले जाती है, एक मरतबा पोते याकूब की बीनाई को लौटा देती है, छठे इमाम ने सारी की सारी कमीज के ये सारे फजाइल बताए और फिर फरमाते हैं वल्लाही इन्ना हादल कमीज लाइंदना अहलल बैत, खुदा की कसम ये कमीज इब्राहिम आज हम अहले बैत के पास है, और जब हमारे कायम जहूर फरमाएंगे तो ये कमीज इब्राहिमी, इब्राहिम की ये मीरात, ये मीरात अंबिया हमारे बेटे कायम के पास होगी, और ये उनकी हकानियत पर एक बहुत बड़ी दलील होगी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये पहली मीरात है। अभी तो बहुत मीरासें हैं कि जो अंबिया की हैं, कि जो आयमा तक पहुंची और आयमा से मेरे 12वें आका तक पहुंची, और ये तवज्जो कीजिएगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुसलमानों के पास म्यूजियम में, अजायब घर में एक बाल रखा हुआ है नबी का, کہ جس کے بارے میں انہیں یہ گمان ہے، یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا